नमस्कार, आप सुन रहे हैं अमर उजाला आवाज। मुरादाबाद संस्करण की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं शिवम वर्मा। पेश हैं सुर्खियां। दिल्ली रोड पर रात 9 बजे दफ्तर के बाहर सीए की गोली मारकर हत्या। 4 साल में सिर्फ अधिकारियों के ऑफिस और बंगले चमके, नहीं बदली शहर की सूरत। होली पर चलेंगी 10 स्पेशल ट्रेनें, मिलेंगी सुविधा। खेत पर जा रही किशोरी अगवा, पूर्व प्रधान समेत 2 पर केस। अब खबरें विस्तार से। मझौला थाना क्षेत्र में दिल्ली रोड पर बुधवार को सरेराह सीए श्वेताब तिवारी 53 वर्ष की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना के समय वह दफ्तर से घर जाने के लिए निकले थे। सीसीटीवी फुटेज में बाइक सवार 2 बदमाश गोलियां बरसाते दिख रहे हैं। अंत तक हत्या की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है। सिविल लाइंस के एमडीए साई गार्डन निवासी श्वेताब तिवारी का दिल्ली रोड पर बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा के नीचे दफ्तर है। बुधवार रात करीब 9 बजे काम खत्म करके वह अपने दोस्त अखिल शर्मा के साथ घर जाने के लिए निकले थे। वह फोन पर बात करते हुए बैंक के बाहर पार्किंग परिसर में टहलने लगे। इस बीच अखिल कार में बैठकर निकल गए। इस दौरान आए बदमाशों ने श्वेताब को गोली मार दी। वह वहीं औंधे मुंह गिर गए। करीब 15 मिनट तक वह घायल अवस्था में बैंक के बाहर पड़े रहे। इस बीच गार्ड नीरज बाहर आया, श्वेताब के सिर से काफी खून बहता देखा तो वह घबरा गया। उसने आसपास के लोगों को इकट्ठा किया। श्वेताब का फोन नहीं उठने पर अखिल भी मौके पर पहुंच गए। अखिल गार्ड की मदद से श्वेताब तिवारी को एपेक्स अस्पताल लेकर पहुंचे। वहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अस्पताल स्टाफ ने बताया कि श्वेताब को एक गोली जबड़े और दूसरी सिर के पिछले हिस्से में मारी गई है। सूचना पर परिजन भी अस्पताल पहुंच गए। एसएसपी हिमराज मीणा और एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया ने परिवार और सीए के दोस्तों से पूछताछ कर घटना की वजह जानने की कोशिश की है। एसएसपी हिमराज मीणा का कहना है कि घटना के हर पहलू पर पड़ताल की जा रही है। मझौला पुलिस के अलावा एसओजी सर्विलांस की टीम घटना के खुलासे के लिए लगाई गई है। आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। दिल्ली रोड पर जिस तरह घटना हुई उसके आसपास कई होटल और मैरिज हॉल हैं। सभी जगह शादी समारोह चल रहे थे। घटनास्थल से कुछ ही दूरी पर बारात चढ़ रही थी जिसकी शोर में गोलियों की तड़तड़ाहट दब गई। हालांकि पास में एक गार्ड ने गोली चलने की आवाज़ सुनी लेकिन उसने भी शादी समारोह में आतिशबाजी होना समझकर उस पर ध्यान नहीं दिया। शहरवासियों को 4 साल पहले स्मार्ट सिटी का सपना दिखाने वाली योजना परवान नहीं चढ़ सकी है। आलम यह है कि अभी तक केवल सरकारी बंगले और ऑफिस ही चमके हैं, अन्य कार्य अधूरे पड़े हैं। शहर के मुख्य जगहों के अलावा चौक चौराहों की हालत भी बदतर है। वहीं स्मार्ट सिटी योजना की अंतिम तिथि जून 2023 है। शहर को चमन बनाने के लिए अभी 4 माह 12 दिन बचे हैं। इतने कम समय में विकास कार्यों को पंख लगना मुश्किल लग रहा है। स्मार्ट सिटी योजना के तहत शहर में करीब 800 करोड़ रुपए की लागत से विकास कार्य कराए जा रहे थे। यह हाल तब है जब प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ यहां आकर स्मार्ट सिटी योजना के तहत करोड़ों की लागत के कई कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास कर चुके हैं। वर्ष 2018 में शहर को स्मार्ट बनाने का काम शुरू हुआ था। शुरू के 1 साल अधिकारियों ने इस दिशा में कोई काम ही नहीं किया। करीब 1.5 साल का समय कोरोना काल में गुजर गया। बीते 1.5 वर्षों में स्मार्ट सिटी के कार्यों में तेजी आई। विकास की 36 परियोजनाओं पर काम हुए। अफसरों ने शहर की सूरत बदलने के तमाम दावे किए। इनमें से कई पर काम भी हुए लेकिन इसके बाद भी शहर की सूरत नहीं बदली। सबसे पहले स्मार्ट सिटी योजना के तहत 187 लाख रुपये की लागत से करियर मित्रा की शुरुआत की गई थी। दावा किया गया कि इससे शहर के लोगों को रोजगार के अवसर तलाशने में काफ़ी मदद मिलेगी लेकिन ऐसा संभव नहीं हो सका। इसके अलावा पहले चरण में 12.32 करोड़ रुपए की लागत से डिजिटल पाठशाला, स्मार्ट क्लास, सोलर हाई मास्क लाइट, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, सोलर रूफटॉप, इलेक्ट्रिक ट्रक, बस चार्जिंग स्टेशन समेत 36.17 करोड़ रुपए की लागत से 7 काम दिसंबर 2021 तक पूरे किए जा चुके थे। दूसरे चरण में शहर के लोगों को शुद्ध पानी उपलब्ध कराने के लिए सोलर बेस्ड वाटर ATM, स्मार्ट टॉयलेट, एयर एंड वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन समेत 503.94 करोड़ रुपये की लागत से 12 विकास कार्य शुरू किए गए। इन कार्यों में 202.98 करोड़ रुपए की लागत से इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और 87.57 करोड़ रुपए की लागत से स्मार्ट रोड नेटवर्क का काम भी शामिल है। खास बात यह है कि इनमें अधिकांश कार्य पूरे हो चुके हैं लेकिन इसके बाद भी शहर स्मार्ट नहीं दिखाई देता। ई बाइक शेयरिंग सेवा भी की सुविधा भी सिर्फ चंद स्थानों पर उपलब्ध कराकर स्मार्ट सिटी के अफसरों ने अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर ली है। होली के मद्देनजर रेलवे ने स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है। इनमें मुरादाबाद मंडल से 10 ट्रेनें गुजरेंगी। मुरादाबाद से लखनऊ, बनारस, बिहार के विभिन्न जनपदों में पंजाब जाने वाले यात्रियों को सहूलियत होगी। बठिंडा से बनारस के लिए, आनंद विहार से बनारस के लिए, आनंद विहार से मुजफ्फरपुर के लिए, चंडीगढ़ से गोरखपुर के लिए, आनंद विहार से सहरसा के लिए, जयनगर से आनंद विहार के लिए, आनंद विहार से जोगवानी के लिए और नई दिल्ली से दरभंगा के लिए व सहरसा से अंबाला के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। इसमें मुरादाबाद मंडल समेत अन्य रेल मंडलों के यात्रियों को जनरल टिकट की सुविधा भी मिलेगी। बागबड़ा थाना क्षेत्र में कार सवार युवक ने एक किशोरी को अगवा कर लिया। आरोपी उसे पूर्व प्रधान के घर ले गया। पीड़िता के परिवार ने इसकी सूचना पुलिस को दी तो आरोपी उसे पूर्व प्रधान के घर छोड़कर भाग गया। पुलिस ने इस मामले में आरोपी युवक और पूर्व प्रधान के खिलाफ अपहरण की धाराओं में केस दर्ज कर लिया है, जबकि किशोरी का मेडिकल परीक्षण कराया गया है। मामला दो समुदाय से जुड़ा होने के कारण गांव में तनाव का माहौल है। पागबड़ा के गांव निवासी युवक ने बताया कि उसकी 16 वर्षीय बहन मंगलवार दोपहर करीब 2 बजे घर से कूड़ा डालने खेत पर जा रही थी। इसी बीच रास्ते में उमरी सब्जीपुर निवासी इमरान कार लेकर आ गया। आरोप है कि उसने जबरन बहन को अपनी कार में बिठा लिया। रात को उसकी बहन को पूर्व प्रधान शाहने आलम के घर छोड़ युवक भाग गया। पूर्व प्रधान ने किशोरी के भाई को कॉल किया और पंचायत करने के लिए कहा, लेकिन किशोरी के परिजन पूर्व प्रधान के घर नहीं गए। उन्होंने इस मामले की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने पूर्व प्रधान से संपर्क किया तो उसने किशोरी को थाने पहुंचा दिया। किशोरी के भाई ने थाने में तहरीर दी, लेकिन पुलिस ने उस तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज नहीं किया। आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने अपनी मर्जी से तहरीर लिखाई है। थाना प्रभारी मोहित चौधरी ने बताया कि तहरीर के आधार पर युवक और पूर्व ग्राम प्रधान के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। पीड़ित का मेडिकल परीक्षण कराया गया है। मेडिकल रिपोर्ट और विवेचना में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं पूर्व प्रधान शाहने आलम का कहना है कि इस मामले से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैंने तो गांव के नाते किशोरी पक्ष के लोगों के साथ जाकर उनकी मदद की है। कुछ राजनीतिक लोग मुझे झूठा फंसा रहे हैं। धन्यवाद।